योएल की पुस्तक और लाओदी की आई सप्तम दिवसी एडवेंटिस्ट कलीसिया संख्या 38
संख्या 38
स्वर्ग की रोटी की परीक्षा यीशु के दिनों में शिष्यत्व की ओमेगा परीक्षा थी और प्राचीन इसराइल के वाचा इतिहास के अल्फा में निरूपित मन्ना परीक्षा के संदर्भ में भी वो ओमेगा थी। आरंभ मन्ना था, अंत स्वर्ग की रोटी थी। ओमेगा सदैव सबसे बड़ा होता है, इसलिए शिष्यों के सबसे बड़े परित्याग के कारण कफरनहूम मसीह के इतिहास तथा शिष्यत्व की परीक्षा में ओमेगा के रूप में चिन्हित खेती आता है।
तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो स्वयं का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरा अनुसरण करे। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वो उसे खो देगा, और जो कोई मेरे कारण अपना प्राण खो देगा वो उसे पाएगा। क्योंकि यदि मनुष्य संपूर्ण संसार को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? क्योंकि मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, और तब वो हर एक को उसके कार्यों के अनुसार प्रतिफल देगा। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, यहाँ खड़े कुछ ऐसे हैं जो जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए न देख लें, मृत्यु का स्वाद न चखेंगे। मत्ती 16:24-30।
कफरनहूम एक ओमेगा परीक्षा है। कफरनहूम की परीक्षा 10 कुवारियों के दृष्टांत में तेल की परीक्षा है, जो आधी रात की पुकार से प्रारंभ होती है और ऐसे काल का उद्घाटन करती है जिसमें मूर्ख कुवारियां यह पहचानती हैं कि उनके पास तेल नहीं है। तब जब वे रविवार के कानून के बंद होते द्वार के निकट आती हैं, वे घबराने लगती हैं, जैसा कि यूहन्ना 6:67 में कफरनहूम के संकट में दर्शाया गया है। भविष्यवाणी की दृष्टि से वे लज्जित हैं।
देखो, परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, वे दिन आते हैं कि मैं देश में अकाल भेजूंगा, न रोटी का अकाल और न पानी की प्यास, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने का अकाल। और वे समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से लेकर पूर्व तक मारे मारे फिरेंगे। वे यहोवा के वचन को ढूंढे के लिए इधर उधर दौड़ेंगे, परंतु उसे ना पाएंगे। उस दिन सुंदर कुंवारियां और जवान पुरुष प्यास के कारण मूर्छित हो जाएंगे, जो सामरिया के पाप की शपथ खाकर कहते हैं, हे दान, तेरा देवता जीवित है, और बेरशेबा की रीति जीवित है, वे भी गिर पड़ेंगे और फिर कभी ना उठेंगे। आमोस 8:18-14।
कफरनहूम की ओमेगा परीक्षा 2024 की आधारभूत परीक्षा के पश्चात आने वाली ओमेगा परीक्षा का आदि रूप है। ओमेगा परीक्षा वो समय है जिसमें दुल्हन पर रविवार के कानून से पहले ही मुहर लगा दी जाती है। इसी में ये विभाजन सदा के लिए अंतिम रूप से स्थिर हो जाता है, क्योंकि एक बार जब वो शुद्ध हो जाती है तब यरूशलेम के भीतर से कोई परदेसी अन्य जाति फिर कभी नहीं चलेगा युगानुयुग।
यहोवा सियोन से भी गरजेगा और यरूशलेम से अपना स्वर सुनाएगा, और आकाश और पृथ्वी कांप उठेंगे, परंतु यहोवा अपनी प्रजा की आशा और इसराइल की संतान का बल होगा। तब तुम जानोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा सियोन अपने पवित्र पर्वत में निवास करता हूँ। तब यरूशलेम पवित्र ठहरेगा और फिर कोई परदेसी उसके भीतर से नहीं गुजरेगा।
और उस दिन ऐसा होगा कि पर्वतों से नया दाखरस टपकेगा और पहाड़ियां दूध से बहेंगी, और यहूदा की सब नदियां जल से भर कर बहेंगी, और यहोवा के भवन से एक सोता फूट निकलेगा जो शित्तीम की घाटी को सींचेगा।
मिस्र उजाड़ हो जाएगा और एदोम उजाड़ वन प्रदेश बन जाएगा, यहूदा की संतान के विरुद्ध की गई हिंसा के कारण, क्योंकि उन्होंने अपनी भूमि में निर्दोषों का रक्त बहाया है। परंतु यहूदा सदा सर्वदा बसा रहेगा और यरूशलेम पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा, क्योंकि उनके रक्त को, जिसे मैंने शुद्ध नहीं किया था, मैं शुद्ध करूंगा, क्योंकि प्रभु सियोन में वास करता है। योएल 3:16-30।
अन्वेषण न्याय के अंतिम चरणों में यरूशलेम को पाप से शुद्ध किया जाता है, और जकरिया के तीसरे अध्याय में यही वो स्थान है जहां मैला लाओदीकियाई वस्त्र के स्थान पर यहोशु को श्वेत सूक्ष्म सन सका फिलाडेल्फियाई वस्त्र दिया जाता है। तब यरूशलेम पवित्र होगी और फिर
पराए उसके भीतर से नहीं गुजरेंगे, क्योंकि गेहूं को कुनैल से अलग कर प्रथम फल की भेंट के रूप में एकत्र किया गया है। ये ओमेगा परीक्षा में घटित होता है, और ये तब होता है जब आकाश के झरोखे खोले जाते हैं और यीशु रत्नों को रत्न पेटिका में ढालते हैं और संसार से कहते हैं, आओ और देखो, आओ और देखो, मेरे राज्य का ध्वज चिन्ह, मेरी वधु, मेरे लेवियों की भेंट जैसे प्राचीन दिनों में थी। आओ और देखो मेरा मंदिर, मेरी रत्न पेटिका जो रत्नों से परिपूर्ण है। प्रत्येक रत्न महिमा के राज्य के मुकुट का एक अंग बनने के लिए तैयार किया गया है।
2024 की आदरभूत अल्फा परीक्षा मंदिर की ओमेगा परीक्षा तक ले जाती है। ओमेगा परीक्षा तब घटित होती है जब आकाश के झरोखे खुलते हैं, अर्थात जब दुल्हन स्वयं को तैयार करती है। मूर्ख कुआरियां और उनका झूठा शांति और सुरक्षा का पश्चात वर्षा संदेश पवन द्वारा खुले झरोखों से बाहर उड़ा दिए जाते हैं, क्योंकि इस इतिहास का संदेश पूर्वी पवन का संदेश है। ये संदेश यशायाह की कठोर पवन है जो पूर्वी पवन के दिन रोक दी जाती है। ये यूहन्ना की चार पवनें हैं जो 144,000 की मुहरबंदी के समय रोक ली जाती हैं।
स्वर्गदूत चारों पवनों को थामे हुए हैं, जिन्हें एक क्रोधित घोड़े के रूप में दर्शाया गया है जो छूटकर निकल भागने और सारी पृथ्वी के मुख पर दौड़ पड़ने को उद्यत है और अपने मार्ग में विनाश तथा मृत्यु ले जाता है। क्या हम शाश्वत जगत की ठीक दहलीज पर सोए रहें? क्या हम निष्क्रिय, ठंडे और निर्जीव बने रहें? काश हमारी कलीसियाओं में परमेश्वर की आत्मा और श्वास उसकी प्रजा में फूंकी जाए, ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हों और जीवित हो जाएं। पांडुलिपि प्रकाशन, खंड 20, कतरा 77।
जो लोग इस्लाम की पूर्वी पवन के उस संदेश को अस्वीकार करते हैं, उन्हें वही पवन जो उनके विद्रोह का प्रतीक है खिड़की से बाहर उड़ा देती है। जिन मूर्खों के पास तेल नहीं है, उनके वर्क से भ्रांति का मलबा सर्वदा चिपका रहता है। इफ्राम फिर अपनी मूर्तियों से जा मिला है। उन्होंने मुहरबंदी के समय के ज्ञान में हुई वृद्धि और तीसरे हाय से संबंधित इस्लाम के साथ उसके संबंध, इन दोनों को अस्वीकार कर दिया। परमेश्वर उनके नकली परवर्ती वर्षा के संदेश की महिमा को लज्जा में बदल देगा।
मेरी प्रजा ज्ञान के अभाव से नाश हो रही है, क्योंकि तूने ज्ञान को अस्वीकार किया है, इसलिए मैं भी तुझे अस्वीकार करूंगा कि तू मेरे लिए याजक न रहेगा। चूंकि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को भुला दिया है, इस कारण मैं भी तेरी संतानों को भूल जाऊंगा। जितना वे बड़े, उतना ही उन्होंने मेरे विरुद्ध पाप किया, इसलिए मैं उनकी महिमा को लज्जा में बदल दूंगा। वे मेरे लोगों के पाप का भक्षण करते हैं और उनके अधर्म पर अपना मन लगाए रहते हैं, और ये होगा, जैसी प्रजा वैसा याजक, और मैं उनके मार्गों के कारण उन्हें दंड दूंगा और उनके कृत्यों के अनुसार उन्हें प्रतिफल दूंगा। क्योंकि वे खाएंगे परंतु तृप्त न होंगे, वे व्यभिचार करेंगे परंतु बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने प्रभु की ओर ध्यान देना छोड़ दिया है। व्यभिचार और दाख मदिरा और नई दाख मदिरा हृदय को छीन लेती हैं। मेरे लोग अपने काष्ठ से परामर्श मांगते हैं और उनकी लाठी उन्हें बताती है, क्योंकि व्यभिचार की आत्मा ने उन्हें भटका दिया और वे अपने परमेश्वर के अधीन से निकलकर व्यभिचार में चले गए हैं। वे पर्वतों के शिखरों पर बलि चढ़ाते हैं और पहाड़ियों पर धूप जलाते हैं, बलूत, पो, पोलर और एल्म के वृक्षों के नीचे, क्योंकि उनकी छाया अच्छी होती है। इसलिए तुम्हारी बेटियां व्यभिचार करेंगी और तुम्हारी बहुएं परपुरुष गमन करेंगी। जब तुम्हारी बेटियां व्यभिचार करेंगी, तब मैं उन्हें दंड न दूंगा, न ही तुम्हारी बहुओं को जब वे परपुरुष गमन करेंगी, क्योंकि वे स्वयं वेश्याओं के साथ अलग होकर रहते हैं और वेश्याओं के साथ बलि चढ़ाते हैं। इसलिए जो लोग समझ नहीं रखते, वे गिर पड़ेंगे। यद्यपि तू, हे इसराइल, व्यभिचार करता है, तथापि यहूदा अपराध न करे, और तुम लोग गिलगाल मत आओ, न बेत आवन पर ऊपर चढ़ो, और न ये शपथ खाओ, यहोवा जीवित है। क्योंकि इसराइल पीछे हटने वाली बछिया के समान पीछे हटता है, अब यहोवा उन्हें विस्तृत स्थान में मेमने के समान चराएगा।
इफ्राइम मूर्तियों से जुड़ा हुआ है,
उसे उसके हाल पर छोड़ दो।
उनका पेय खट्टा है, उन्होंने निरंतर व्यभिचार किया। उसके शासक लज्जा से प्रेम करते हैं। दो दो वायु ने उसे अपने पंखों में बांध लिया है और वे अपने बलिदानों के कारण लज्जित होंगे। होशे 4:6।
जो अपशिष्ट हटाया जाता है उसमें मूर्ख कुवारिया भी है और उनके वे त्रुटिपूर्ण सिद्धांत भी जिनसे वे संयुक्त हैं। हम वही होते हैं जो हम खाते हैं, और उन्होंने पूर्वी हवा के संदेश को अस्वीकार कर दिया, उसके स्थान पर उस झूठ को चुन लिया जो अपने साथ बलवान भ्रम लाता है, और वे अपने कृत्रिम शांति और सुरक्षा की अंतिम वर्षा के संदेश से संयुक्त हो गईं। योएल का नया दाख रस उनके मुख से काट दिया गया है, ठीक वहीं जहां यिर्मयाह परमेश्वर का मुख बनता है।
सत्य को अस्वीकार करते समय मनुष्य उसकी रचयिता को ही अस्वीकार करते हैं। परमेश्वर की व्यवस्था को पद्दलित करते हुए वे व्यवस्था दाता के अधिकार को नकारते हैं। झूठी शिक्षाओं और सिद्धांतों की मूर्ति बनाना उतना ही सरल है जितना लकड़ी या पत्थर की मूर्ति गढ़ना। परमेश्वर के गुणों का गलत निरूपण करके शैतान मनुष्यों को उसे मिथ्या स्वरूप में समझने को प्रवृत्त करता है। अनेकों के लिए यहोवा के स्थान पर एक दार्शनिक मूर्ति सिंहासन पर विराजमान है, जबकि जीवित परमेश्वर, जैसा कि वो अपने वचन में, मसीह में और सृष्टि के कार्यों में प्रकट हुआ है, उसकी आराधना बहुत कम लोग करते हैं। हजारों प्रकृति को देवत्व प्रदान करते हैं, परंतु प्रकृति के परमेश्वर को नकार देते हैं। यद्यपि भिन्न रूप में, आज मसीही जगत में मूर्ति पूजा उतनी ही वास्तविकता से विद्यमान है जितनी एलिया के दिनों में प्राचीन इसराइल में थी। अनेक कथित बुद्धिमान पुरुषों, दार्शनिकों, कवियों, राजनीतिज्ञों, पत्रकारों का देवता, परिष्कृत फैशनेबल मंडलियों का देवता, अनेक महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों का, यहाँ तक कि कुछ धर्मशास्त्रीय संस्थानों का भी, फोनीशिया के सूर्य देवता बाल से कुछ ही बेहतर है। द ग्रेट कॉन्ट्रोवर्सी 583।
मिलर के स्वप्न में सच्चे और झूठे के पृथक्करण के समय पवन झूठी कुवारियों को बाहर ले जाता है, जबकि प्रभु खुली खिड़की की ओमेगा आंतरिक परीक्षा के दौरान अपनी दुल्हन को मोर बंद करता है।
देखो, मैं अपने दूत को भेजूंगा और वो मेरे आगे मार्ग तैयार करेगा, और प्रभु जिसे तुम खोजते हो अचानक अपने मंदिर में आएगा, अर्थात वाचा का दूत जिससे तुम प्रसन्न होते हो। देखो, वो आएगा, सेनाओं का यहोवा कहता है, परंतु उसके आने के दिन को कौन सह सकेगा, और जब वो प्रकट होगा तब कौन ठहर सकेगा, क्योंकि वो कसौटी परखने वाले की आग के समान और धोबियों के साबुन के समान है, और वो चांदी को गलाने वाले और शुद्ध करने वाले के समान बैठ जाएगा, और वो लेवी की संतानों को शुद्ध करेगा और उन्हें सोने और चांदी के समान निर्मल करेगा, ताकि वे यहोवा के लिए धर्म से भेंट चढ़ाए। तब यहूदा और यरूशलेम की भेंट यहोवा को प्रिय लगेगी, जैसे प्राचीन दिनों में और जैसे पूर्व काल के वर्षों में लगती थी। मलाकी 3:1-9।
लेवी के पुत्र उन लेवियों के पुत्र है जो हारून की पशु की मूर्ति की परीक्षा के समय और फिर यरोबाम की पशु की मूर्ति की परीक्षा के समय भी विश्वास योग्य रहे। वे वही हैं जो पशु की मूर्ति की परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, वह परीक्षा जिसके द्वारा उनकी अनंत नियति निर्णीत होती है, और वो परीक्षा जिसे उन्हें इससे पहले कि हम मोहर बंद किए जाए अवश्य उत्तीर्ण करना है।
प्रभु ने मुझे स्पष्ट रूप से दिखाया है कि अनुग्रह काल के समाप्त होने से पहले पशु की प्रतिमा बनाई जाएगी, क्योंकि वो परमेश्वर की प्रजा के लिए महान परीक्षा होगी जिसके द्वारा उनका अनंत भाग्य निर्धारित होगा। ये वो परीक्षा है जिससे परमेश्वर की प्रजा को मोहर लगाए जाने से पहले होकर गुजरना होगा, जो सभी उसकी व्यवस्था का पालन करके और मिथ्या सप्त को स्वीकार करने से इंकार करके परमेश्वर के प्रति अपनी निष्ठा सिद्ध करेंगे, वे प्रभु परमेश्वर यहोवा के ध्वज के नीचे पंक्तिबद्ध होंगे और जीवित परमेश्वर की मोहर प्राप्त करेंगे, जो स्वर्गीय मूल की सच्चाई को त्याग देंगे और रविवार का सप्त स्वीकार करेंगे, वे पशु का चिन्ह प्राप्त करेंगे। सेवंथ डे एडवेंटिस्ट बाइबल कमेंट्री, खंड 7:9-57।
पशु की प्रतिमा की परी रविवार के कानून के समय होने वाली पशु के चिन्ह की परीक्षा से पूर्व की परीक्षा है, और उसे द्वार बंद होने से पहले उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। ये वो परीक्षा है जो धर्मियों को शुद्ध करती है और साथ ही धर्मियों को अधर्मियों से पृथक करती है। ये वो परीक्षा है जहां दानियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगु बाबुल के आहार का सेवन करने वालों की अपेक्षा रूप से सुंदरतर और मांस में पुष्टतर पाए गए। एक वर्ग ने स्वर्ग की रोटी खाई थी और दूसरे ने बाबुल की रोटी। ये कफरनहूम के आराधनालय में रोटी की परीक्षा है।
बाह्य दृष्टि से जिस परीक्षा काल में हम अभी हैं वो पशु की प्रतिमा की परीक्षा है, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका में कलीसिया और राज्य का संयोजन। उसके समानांतर आंतरिक परीक्षा काल कुमारियों के एक वर्ग की पहचान करता है जो मानवता का प्रतिरूप प्रकट करती हैं, और कुमारियों के दूसरे वर्ग की जो दिव्यता और मानवता के संयुक्त प्रतिरूप को प्रकट करती हैं। मलाकी द्वारा लेवियों के शुद्धिकरण और परिष्करण को निर्दिष्ट करने के पश्चात परमेश्वर एक परीक्षा प्रस्तावित करता है।
और मैं न्याय करने को तुम्हारे निकट आऊंगा, और मैं जादू टोना करने वालों के विरुद्ध, व्यभिचारियों के विरुद्ध और झूठी शपथ खाने वालों के विरुद्ध एक शीघ्र साक्षी ठहरूंगा, तथा उनके विरुद्ध भी जो भाड़े के मजदूर को उसकी मजदूरी में दबाते हैं और विधवा व अनाथ पर अत्याचार करते हैं और परदेसी को उसके अधिकार से वंचित करते हैं और जो मुझसे नहीं डरते। यहोवा सेनाओं का ये वचन है। क्योंकि मैं यहोवा हूँ, मैं परिवर्तित नहीं होता, इसलिए हे याकूब की संतान तुम नाश नहीं हुए। मलाकी 3:5-6।
पहली परीक्षा परमेश्वर का भय मानना है, और जो वर्ग वाचा के दूत द्वारा ली गई परीक्षा में असफल हुआ उन पर तब 5 धिक्कार सुनाए जाते हैं। 5 मूर्ख कुंवारियों में से प्रत्येक के लिए एक, जो दीनता, दयनीयता, दरिद्रता, अंधता और नग्नता के अनुरूप है। 5 मूर्ख कुंवारियों के लिए 5 भविष्य सूचक विशेषताएं जो और मुझसे न डरना इस वाक्य के अंतर्गत संक्षेपित है। ये वे हैं जो आधारभूत प्रथम अल्फा परीक्षा में असफल हुए। वे इसलिए असफल हुए क्योंकि उन्होंने ये नहीं समझा कि परमेश्वर कभी नहीं बदलता। ये वही हैं जो 2024 की आधारभूत बाह्य अल्फा परीक्षा में असफल हुए।
अतीत के इतिहास से सीखें मिलती हैं और इन पर ध्यान दिलाया जाता है ताकि सब समझ लें कि परमेश्वर आज भी उसी रीति से कार्य करता है जिस रीति से वो सदैव करता आया है। इसके कार्य में और राष्ट्रों के बीच उसका हाथ आज भी ठीक वैसे ही दिखाई देता है जैसा कि तब से दिखाई देता आया है जब अदन में आदम को पहली बार सुसमाचार घोषित किया गया था। ऐसे काल आते हैं जो राष्ट्रों और कलीसिया के इतिहास में निर्णायक मोड़ सिद्ध होते हैं। ईश्वरीय प्रबंध में जब ये विभिन्न संकट आते हैं तब उस समय के लिए प्रकाश दिया जाता है। यदि उसे ग्रहण किया जाता है तो आध्यात्मिक उन्नति होती है, यदि उसे अस्वीकार किया जाता है तो आध्यात्मिक अवनति और जहाज की डूब जाने जैसी तबाही आती है। प्रभु ने अपने वचन में सुसमाचार के आक्रामक कार्य को प्रकट किया है जैसा कि वो अतीत में संचालित हुआ है और भविष्य में भी होगा, यहाँ तक कि अंतिम संघर्ष तक जब शैतानी शक्तियां अपना अंतिम अद्भुत कदम उठाएंगी। बाइबल एको 26 अगस्त 1895।
लाओदीकियों को ये नहीं दिखता कि मनुष्यों के साथ परमेश्वर का व्यवहार सदैव एक सा रहता है। यदि ज्योति अथवा तेल ग्रहण किया जाए तो आशीष होती है, यदि नहीं तो जहाज भंग होता है।
प्राचीन युगों में स्वर्ग के प्रभु परमेश्वर ने अपने भेद अपने भविष्यद्वक्ताओं को प्रकट किए। वर्तमान और भविष्य उसे समान रूप से स्पष्ट हैं। परमेश्वर की वाणी युगानु सी जूंझती है, मनुष्य को बताती है कि क्या घटित होने वाला है। राजा और राजकुमार अपने नियत समय पर अपने अपने स्थान ग्रहण करते हैं। वे सोचते हैं कि वे अपनी ही योजनाएं पूरी कर रहे हैं, परंतु वस्तुतः वे उस वचन को पूरा कर रहे हैं जो परमेश्वर ने कहा है। पौलुस ये घोषित करता है कि परमेश्वर के मनुष्यों के साथ किए गए पूर्वकालीन व्यवहारों के अभिलेख हमारी चेतावनी के लिए लिखे गए हैं जिन पर युगों का अंत आ पहुंचा है। दानियल का इतिहास हमारी चेतावनी के लिए हमें दिया गया है। प्रभु का भेद उनके साथ है जो उसका भय मानते हैं। दानियल का परमेश्वर आज भी जीवित है और राज्य करता है। उसने अपने लोगों के लिए स्वर्ग के द्वार बंद नहीं किए हैं। जैसे यहूदी युग में था वैसे ही इस युग में भी परमेश्वर अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को अपने भेद प्रकट करता है। प्रेरित पत्रस कहते हैं, हमारे पास भविष्यवाणी का एक और भी अधिक दृढ़ वचन है, और तुम इस पर ध्यान देते हो तो अच्छा करते हो। जैसे अंधकारमय स्थान में चमकने वाले प्रकाश पर ध्यान दिया जाता है जब तक कि दिन उदय न हो जाए और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में उदित न हो। यह पहले जान लो कि शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी निजी व्याख्या पर आधारित नहीं है, क्योंकि भविष्यवाणी प्राचीन काल में मनुष्य की इच्छा से नहीं आई, परंतु परमेश्वर के पवित्र मनुष्यों ने पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर वचन बोले। अविश्वासी और ईश्वरहीन लोग समय के उन चिन्हों के महत्व को नहीं परखते जो भविष्यवाणी के वचन में पूर्व से बताए गए हैं। अज्ञानवश वे ईश्वर प्रेरित अभिलेख को स्वीकार करने से इनकार कर सकते हैं, परंतु जब मसीही कहलाने वाले महान मैं हूं द्वारा अपने उद्देश्यों को प्रकट करने हेतु प्रयुक्त विधियों और साधनों के विषय में उपहास पूर्वक बोलते हैं, तब वे अपने को धर्मशास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ दोनों से ही अनभिज्ञ सिद्ध करते हैं। सृष्टिकर्ता भली भांति जानता है कि मानव स्वभाव में किन किन तत्वों से उसे निपटना है। वह ये भी जानता है कि वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए किन साधनों का उपयोग करना है। मनुष्य का वचन विफल पड़ता है। जो मनुष्यों के कथनों को अपना आश्रय बनाता है उसका कांपना उचित है, क्योंकि वो किसी दिन जहाज नष्ट पोत के समान हो जाएगा। परमेश्वर का वचन अभ्रांत है और सदैव स्थिर रहता है। मसीह ये घोषित करते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाएं, तब तक व्यवस्था से एक बिंदु या एक मात्रा भी किसी रीति से न टलेगा, जब तक सब कुछ पूरा न हो जाए। परमेश्वर का वचन अनंतता के अविच्छिन्न युगों भर स्थिर बना रहेगा। यूथ इंस्ट्रक्टर 1 दिसंबर 51-3।
परमेश्वर कभी नहीं बदलता और वो उसी विधि से कार्य करता है जैसा वो सदैव करता आया है।
पृथ्वी पर परमेश्वर का कार्य प्रत्येक महान सुधार या धार्मिक आंदोलन में युग से युग तक एक उल्लेखनीय समानता प्रस्तुत करता है। मनुष्यों के साथ परमेश्वर के व्यवहार के सिद्धांत सदैव समान रहे हैं। वर्तमान के महत्वपूर्ण आंदोलनों के अतीत में समानांतर मिलते हैं और पूर्व युगों में कलीसिया के अनुभवों में हमारे समय के लिए अत्यंत मूल्यवान पाठ निहित हैं। महान विवाद 30:43।
मलाकी के 3 अध्याय के 4 पद वाचा के दूत के लिए मार्ग तैयार करने वाले दूत की पहचान करते हैं और लेवियों के शोधन तथा शुद्धिकरण को निरूपित करते हैं। तब प्रभु लाओदीकिया पर न्याय सुनाता है, ये दर्शाते हुए कि वे परमेश्वर का भय नहीं मानते, अर्थात वे 3रे स्वर्गदूत की आधारभूत दूत परीक्षा में असफल हुए हैं। उनका भय रहित होना ज्ञान के उद्देश्यपूर्ण अस्वीकार का सूचक है, और जिस ज्ञान को वे अस्वीकार करते हैं उसका संदर्भ मार्ग तैयार करने वाले दूत के इतिहास तथा उसके पश्चात आने वाले दिव्य दूत के अंगीकार से है। सभी भविष्यद्वक्ता अंतिम दिनों की ओर संकेत करते हैं, और यदि कोई वास्तविक न होता तो किसी कूट सुधारवादी आंदोलन की पहचान करने का कोई कारण भी न होता।
परंतु शैतान निष्पक्ष निष्क्रिय नहीं था। अब उसने वही करने का प्रयास किया जो उसने प्रत्येक अन्य सुधार आंदोलन में किया था। सच्चे कार्य के स्थान पर एक जाली वस्तु उन पर थोपकर लोगों को धोखा देना और नष्ट करना। जैसे मसीही कलीसिया की 1री शताब्दी में झूठे मसीह थे, वैसे ही 16वीं शताब्दी में झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े हुए। द ग्रेट कॉन्ट्रोवर्सी 805।
मलाकी के 3रे अध्याय के 6 पदों का संदर्भ 144,000 के सुधारवादी आंदोलन के लेवियों का परिशोधन और शुद्धिकरण है। फ्यूचर फॉर अमेरिका या तो वही आंदोलन है अथवा अनेक छद्म रूपों में से एक। तब मलाकी कहता है,
तुम्हारे पितरों के दिनों से ही तुम मेरे विधानों से भटक गए हो और उनका पालन नहीं किया है। मेरी ओर लौट आओ और मैं भी तुम्हारी ओर लौट आऊंगा, सेनाओं का प्रभु कहता है। मलाकी 3:7।
4 पीढ़ियों में फैला क्रमशः बढ़ता हुआ विद्रोही योएल की पुस्तक की भूमिका और पृष्ठभूमि है, और मलाकी इसी क्रमशः बढ़ते विद्रोह को तब चिन्हित करता है जब वो कहता है, तुम अपने पितरों के दिनों से ही दूर चले गए हो। 1863 से जो विद्रोह की पहली पीढ़ी के पितरों के दिन थे, वे परमेश्वर से क्रमशः और अधिक दूर होते चले गए हैं। उनके निरंतर पाप के विरुद्ध उच्चारित घोषणा लाओदीकिया के उस आह्वान से संतुलित है जो शोकपूर्ण स्वरों में ये प्रतिज्ञा करता है कि यदि वे मात्र लौट आए तो परमेश्वर भी उनके पास लौट आएगा।
परंतु तुम कहते हो, हम किस प्रकार लौटें? क्या मनुष्य परमेश्वर को लूटेगा? तथापि तुमने मुझे लूटा है। फिर तुम कहते हो, हमने तुझे किस बात में लूटा? दशमांश और भेंटों में।
तुम शाप से शापित हो, क्योंकि तुमने मुझे लूटा है, हाँ, इस समस्त राष्ट्र ने।
समस्त दशमांश भव भंडार गृह में ले आओ, ताकि मेरे घर में भोजन हो, और अब इसी द्वारा मुझे परखो। सेनाओं के यहोवा कहते हैं कि क्या मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे नहीं खोल दूंगा, और तुम पर ऐसी आशीष उंडेलूंगा कि उसे समेटने के लिए पर्याप्त स्थान न रहेगा।
और मैं तुम्हारे लिए बक्षक को डांटूंगा, और वो तुम्हारी भूमि के फल को नष्ट नहीं करेगा, और न तुम्हारी दाखलता खेत में अपना फल समय से पहले गिराएगी। यहोवा सेनाओं का ये वचन है। और सब जातियां तुम्हें धन्य कहेंगी, क्योंकि तुम रमणीय देश ठहरोगे। यहोवा सेनाओं का ये वचन है। मलाकी 3:5-5।
2084 की अब अल्फा आधारभूत बाह्य परीक्षा के पश्चात 2526 की शिरोशिला स्वरूप आंतरिक परीक्षा होती है। वो शिरोशिला स्वरूप परीक्षा तब घटित होती है जब आकाश के झरोखे खोले जाते हैं, और विजयी कलीसिया के परिप्रकश में उन खुले झरोखों की पहचान तीन संदर्भों में की गई है, मलाकी 3, मिलर का स्वप्न और प्रकाशित वाक्य 19। मलाकी अल्फा है, मिलर का स्वप्न मध्य है, और प्रकाशित वाक्य ओमेगा है। ये परीक्षा मसीह के द्वारा धूल ब्रश लिए हुए मनुष्य के रूप में रत्नों को संदूक में डालते हुए चित्रित की गई है। वे रत्न एक साथ अपने क्रम में पूर्णतः सुव्यवस्थित सत्य भी है, और अवशिष्ट जन भी। भंडार गृह वो स्थान है जहां भोजन एकत्र किया और वितरित किया जाता है। मन्ना की परीक्षा कफरनहूम की परीक्षा और स्वर्ग की रोटी की भांति भोजन ही विषय है। कुंवारियों के दृष्टांत में मांस तेल है, और वो चरित्र पवित्र आत्मा तथा वो भविष्यद्वाणी संदेश का प्रतीक है जो मसीह का चरित्र विकसित करने वालों के हृदयों और मनों में पवित्र आत्मा को प्रविष्ट कराता है। मांस योएल का नया दाखरस है जो इफ्राइम के मध्यपों से वंचित कर दिया गया है। दूसरे दूत की आंतरिक शीर्ष योगशिला मंदिर परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आपको बाह्य प्रथम अल्फा आधारभूत परीक्षा उत्तीर्ण की हुई होनी चाहिए। यदि आपने आधार को स्वीकार नहीं किया है, तो आप उस मंदिर का भाग नहीं हो सकते जो उसी आधार पर खड़ा किया गया है। परंतु यदि आप उन लोगों की गणना में नहीं हैं जिन्होंने उस आधारभूत परीक्षा को उत्तीर्ण किया है, तो आप अपना कृत्रिम आध्यात्मिक गृह बालू पर बनाएंगे। यूहन्ना उस कृत्रिम आध्यात्मिक गृह को शैतान की सभा कहता है, और यिर्मयाह है उसे ठट्ठा करने वालों की मंडली। सब दशमांश और भेंटे भंडार गृह में ले आओ। यही वो आंतरिक परीक्षा है जहां मुहर अंकित की जाती है। धूल झाड़ने वाले पुरुष ने परमेश्वर के शेष जनों को विस्तृत संदूक में डाल दिया, और ऐसा करते हुए वो समस्त दशमांश को भंडार गृह में लाने के कार्य का चित्रण कर रहा था। जब वो स्वर्ग के झरोखों से आशीष उंडेलता है, तब लेविय वही उठाई हुई भेंट होते हैं। धूल झाड़ने वाले पुरुष के रत्न उसके शेष जन ही है, और यशाया के 6 अध्याय में वे शेष जन दशमांश के रूप में पहचाने गए हैं।
तब मैंने कहा, हे प्रभु, कब तक? और उसने कहा, जब तक नगर उजाड़ होकर बिना निवासी न हो जाए, और घरों में कोई मनुष्य न रहे, और भूमि सर्वथा उजाड़ न हो जाए, और यहोवा मनुष्यों को दूर दूर तक हटा दे, और देश के बीच में बड़ा परित्याग हो, तो भी उसमें एक दशमांश रहेगा, और वो लौटेगा, पर वो नाश किया जाएगा, जैसे तेरेबिन का पेड़ और बलूत, जिनमें अपने पत्ते गिराने पर भी ठूंठ बना रहता है, वैसे ही उसका ठूंठ पवित्र बीज होगा। यशाया 6:11-13।
प्रभु अनेक साक्षियों की गवाही पर ये ठहराते हैं कि कब तक का प्रश्न रविवार के कानून की ओर संकेत करता है, और यशाया अध्याय 6:3 में स्वर्गदूत ये उद्घोषणा करते हैं, पवित्र पवित्र है सेनाओं का यहोवा, सारी पृथ्वी उसकी महिमा से परिपूर्ण है। सिस्टर व्हाइट इसे प्रकाशित वाक्य अध्याय 18 के पराक्रमी स्वर्गदूत से संबद्ध करती है।
जैसे वे स्वर्गदूत भविष्य को देखते हैं जब समस्त पृथ्वी उसकी महिमा से भर जाएगी, तो विजयी स्तुति गीत मधुर गान में एक से दूसरे तक प्रतिध्वनित होता है, पवित्र 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 सेनाओं का प्रभु है। वह परमेश्वर की महिमा करने में पूर्ण तक संतुष्ट है, और उसकी उपस्थिति में उसकी स्वीकृति की मुस्कान के तले उन्हें इससे बढ़कर कुछ भी नहीं चाहिए। उसकी छवि को धारण करने में, उसकी सेवा करने और उसकी आराधना करने में उनकी सर्वोच्च आकांक्षा पूर्ण तक पूरी हो जाती है। रिव्यू एंड हेरोल्ड, 22 दिसंबर 1800।
यशाया का 6:9-11 को चिन्हित करता है जब पृथ्वी प्रकाशित वाक्य 18 की 2 वाणियों में से पहली वाणी की महिमा से आलोकित हुई थी। जब यशाया ने कब तक पूछा, तब इस अध्याय का इतिहास 9:11 से लेकर रविवार के कानून तक की अवधि के रूप में चिन्हित किया जाता है, जहां दूसरी वाणी का आगमन होता है। यशाया हमें सूचित करता है कि रविवार के कानून के समय एक अवशेष होगा जो दशमांश है। उस अवशेष के भीतर पदार्थ है, उसके पात्रों में तेल है,
तथापि उसमें 10वां भाग दशमांश रहेगा और वो लौटेगा और भक्षण किया जाएगा, जैसे तेरबिंत का वृक्ष और जैसे बलूत का वृक्ष, जिनमें जब वे अपनी पत्तियां झाड़ते हैं तब भी उनका मूल रहता है, वैसे ही पवित्र वंश उसका मूल होगा। यशाया 6:13।
दशमांश वे हैं जिन्होंने मलाकी और यिर्मयाह दोनों के लौट आने के आह्वान के प्रत्युत्तर में लौट आए हैं। वे मानवता के वृक्ष हैं जो देवत्व पवित्र बीज के साथ संयुक्त है। उन्हें खाया जाएगा क्योंकि वे केवल दूत ही नहीं वरन पेंटेकोस्ट की हिलाई जाने वाली रोटियों का संकेत ध्वज भी है। वे वो संदेश हैं जिसे अन्य जाति लोग खाएंगे।
इस कारण यहोवा यूं कहता है, यदि तू लौट आए तो मैं तुझे फिर लौटा लाऊंगा और तू मेरे सम्मुख खड़ा रहेगा, और यदि तू तुच्छ में से बहुमूल्य को अलग निकाले तो तू मेरे मुख के समान होगा। वे तेरी ओर लौटें परंतु तू उनकी ओर न लौटना। यिर्मयाह 15:19।
यिर्मयाह उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्होंने स्वर्गदूत के हाथ में जो संदेश था उसे खाया, जो अल्फा और आधारभूत परीक्षा था, जिसका प्रतिनिधित्व 11 अगस्त 1840, 1828 और 9 नवंबर द्वारा किया गया था, क्योंकि वो कहता है कि उसने वचन पाए और उन्हें खा लिया।
तेरे वचन मिले और मैंने उन्हें खा लिया, और तेरा वचन मेरे हृदय के आनंद और हर्ष का कारण हुआ, क्योंकि मैं तेरे नाम से कहलाता हूँ, हे सेनाओं के यहोवा परमेश्वर। यिर्मयाह 15:16।
यिर्मयाह ने जब स्वदूत के हाथ में छोटी पुस्तक को खा लिया, तब वो परमेश्वर के नाम से कहलाया, और उस संदेश ने लज्जा के विपरीत आनंद और हर्ष उत्पन्न किया। जब परमेश्वर का नाम यिर्मयाह को दिया जाता है, तब वो उन 144,000 का प्रतिनिधित्व करता है जो फिलाडेल्फिया आए हैं।
जो जय पाएगा उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक स्तंभ बनाऊंगा, और वो फिर कभी बाहर न जाएगा, और मैं उस पर अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर का नाम, अर्थात नया यरूशलेम, जो मेरे परमेश्वर की ओर से स्वर्ग से उतरता है, लिखूंगा, और मैं उस पर अपना नया नाम लिखूंगा। प्रकाशित वाक्य 3:12।
यिर्मयाह ने 9 अगस्त के संदेश को खा लिया और 18 जुलाई 2020 की निराशा को सहा।
मैं ठट्टा करने वालों की सभा में नहीं बैठा, न मैं आनंदित हुआ। तेरे हाथ के कारण मैं अकेला बैठा रहा, क्योंकि तूने मुझे रोष से भर दिया। मेरी पीड़ा निरंतर क्यों है और मेरा घाव असाध्य क्यों है, जो चंगा होने से इनकार करता है? क्या तू मेरे लिए सर्वथा झूठे के समान होगा और ऐसे जल के समान जो धोखा देते हैं? यिर्मयाह 15:17-18।
यिर्मयाह की ठट्ठा करने वालों की सभा वही है जिसे फिलाडेल्फिया और स्मिर्ना शैतान की सभा कहते हैं, जो कहते हैं कि वे यहूदी हैं परंतु है नहीं। यिर्मयाह आनंदित नहीं हुआ क्योंकि जिस संदेश का उसने प्रचार किया था वो असत्य संदेश था, जो आनंद नहीं वरन केवल लज्जा उत्पन्न करता था। यिर्मयाह का ऐसा निरंतर घाव जो चंगा होने से इंकार करता था, वही 3.5 दिन थे जिनमें ठट्ठा करने वालों की सभा आनंदित हुई, जबकि यिर्मयाह, मूसा और एलिया उस सड़कर पर मृत पड़े थे जो मरी हुई सूखी हड्डियों की घाटी से होकर गुजरती थी। उस संदेह और अनिश्चितता की अवधि के बीच प्रभु ने यिर्मयाह से लौट आने को कहा।
इस कारण यहोवा यूं कहता है, यदि तू लौट आए तो मैं तुझे फिर से ले आऊंगा और तू मेरे सामने ठहरेगा, और यदि तू निकृष्ट में से उत्तम को अलग करे तो तू मेरे मुख के समान होगा,
वे तेरे पास लौटें, परंतु तू उनके पास न लौटना, और मैं तुझे इस प्रजा के लिए एक दृढ़ पीतल की दीवार बना दूंगा। वे तेरे विरुद्ध लड़ेंगे, परंतु तेरे ऊपर प्रबल न होंगे, क्योंकि मैं तुझे बचाने और छुड़ाने के लिए तेरे साथ हूं, यहोवा की ये वाणी है। और मैं तुझे दुष्टों के हाथ से छुड़ाऊंगा और क्रूरों के हाथ से तुझे छुड़ा लूंगा। यिर्मयाह 15:19-21।
यदि यिर्मयाह लौट आए तो परमेश्वर उसे एक सेना बना देगा जिसका रूपक पीतल की दीवार के रूप में किया गया है, जिसके विरुद्ध दुष्ट और भयंकर दोनों युद्ध करेंगे परंतु प्रबल न होंगे। यह श्वेत अश्वों की वो सेना है जिन पर अश्वारोही श्वेत सन वर्दियों में सुसज्जित है। वही सेना अथवा वो पीतल की दीवार यिर्मयाह के लौटने पर तब खड़ी की जाती है जब और यदि वो बहुमूल्य को निकृष्ट से अलग करता है। येशकेल 37 में वो सेना जिसे बहन वाइट परमेश्वर की शेष प्रजा कहती हैं, उनके लौट आने पर खड़ी होती है। शेष जन लौटते हैं और जब वे बहुमूल्य को निकृष्ट से अलग करते हैं तब वे एक पराक्रमी सेना के रूप में खड़े होते हैं और तब वे परमेश्वर का मुख बन जाते हैं। उन्हें सत्य के वचन को ठीक रीति से विभाजित करना है, गेहूं से भूसी को अलग करते हुए, क्योंकि वे उन्हीं नियमों का प्रयोग कर रहे हैं जिन्हें उनके पिता ने अपनाया था जो एक पिसाई करने वाले थे और सर्वोत्कृष्ट रोटी तैयार करने में निपुण थे। यदि वे बहुमूल्य को निकृष्ट से, सत्य को त्रुटि से अलग करें तो वे परमेश्वर के पहरेदार होंगे। जब परमेश्वर दुष्टों और बुद्धिमानों को अलग करेगा,
2023 में यिर्मयाह ने लौट आने के आह्वान का प्रत्युत्तर दिया। फिर 2024 में वो निराश हुआ क्योंकि रोम द्वारा दर्शन की स्थापना की आधारभूत परीक्षा पर एक बड़ा समूह अलग हो गया। यिर्मयाह ने बहुमूल्य को घृणित से, सत्य को भ्रांति से उचित रीति से पृथक किया और स्वर्ग की खिड़कियां खुलने के समय की आंतरिक ओमेगा परीक्षा तक दृढ़ बना रहा। जब स्वर्ग खोल दिए जाते हैं तब विजयी कलीसिया अपने को तैयार कर चुकी होती है। वो आधारभूत बाह्य अल्फा परीक्षा उत्तीर्ण कर चुकी होती है। तत्पश्चात वो स्वर्ग की खिड़कियों से संबद्ध आंतरिक ओमेगा परीक्षा भी उत्तीर्ण करती है। या तो वो उत्तीर्ण होकर परमेश्वर की सेना का भाग बनती है, नहीं तो वो वायु से खिड़कियों से बाहर उड़ा दी जाती है। उसे एक विस्तृत मैदान में बाहर फेंक दिया जाता है, जैसा कि यशायाह 22 में शेबना के साथ हुआ, अथवा उसे पेटिका में डाल दिया जाता है। या तो उसे पेटिका में डाला जाता है अथवा उसे मंदिर से बाहर निकाला जाता है, जैसे नहमयाह ने तोबिया को बाहर निकाला था, या जैसे मसीह ने मुद्रा विनिमय करने वालों को बाहर निकाला था। जब धूल झाड़ने वाला व्यक्ति नौततो रत्नों को पेटिका में डालता है तो वो पेटिका या तो सत्य की नई रूपरेखा में परमेश्वर का वचन होती है अथवा सत्य का परमेश्वर का मंदिर होती है, और ये दोनों ही मसीह के प्रतीक हैं और मसीह को विभाजित नहीं किया जाना है।
क्या मसीह विभाजित है? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया था, या क्या तुम पौलुस के नाम में बपतिस्मा लिए गए थे? 1 कुरिन्थियों 1:13।
मसीह पौलुस से पृथक नहीं है, देवत्व पौलुस की मानवता से पृथक नहीं था। जब मनुष्य के रूप में पौलुस ने देवत्व के नाम से बपतिस्मा दिया तब कोई विभाजन नहीं था, क्योंकि मानव दूत देवीय संदेश के साथ संयुक्त है। पौलुस उतनी ही निश्चयता से देवत्व से संयुक्त था जितनी निश्चयता से एफ्रेम अपनी मूर्तियों से संयुक्त था। मिलर के स्वप्न में जो लोग मंदिर पेटिका में डाले जाते हैं वे मलाकी 3 के वे दशमांश हैं जिन्हें भंडार गृह में लाया जाना है, जहां भोजन संग्रहित और वितरित होता है। वो भंडार गृह 144,000 का मंदिर है, अथवा जैसा पत्रस ने कहा, एक आत्मिक गृह, एक पवित्र याजकत्व। पेटिका वही आत्मिक गृह है और रत्न याजकति हैं। इसी कारण मिलर का स्वप्न पृष्ठ 81 पर अभिलेखित है, जो दिव्य महायाजक के साथ 80 मानवीय याजकों के संयुक्त होने का प्रतीक है। मिलर के स्वप्न में धूल झाड़ने वाला मनुष्य रत्नों को लाने का निरूपण करता है, जो यशाया के दशम जाम और मलाकी के अर्पण है। जब वो रत्नों को मंदिर में निक्षेप करता है, जो भंडार गृह है, जो पेटिका है, प्रायः दूसरा स्वर्गदूत 2 प्रश्नों के साथ संबद्ध होता है, और ओमेगा परीक्षा, अल्फा परीक्षा तथा तीसरे लिटमस परीक्षण के संदर्भ में
दूसरा स्वर्गदूत ही है। आह्वान लौटने का है और लौटना इस प्रकार प्रदर्शित होता है कि सब दशमजाम और अर्पण भंडार गृह में लाए जाए ताकि उसके भवन में आहार हो। यहां दो प्रश्न हैं, आहार क्या है और भंडार गृह क्या है, रत्न दूत है या रत्न संदेश है, इसी से ये निर्धारित किया जाएंगे उन दो प्रश्नों के उत्तर कैसे दिए जाएंगे। यदि वे दूत हैं तो वे वही दशमांश हैं जिससे मंदिर का निर्माण होता है जो सदैव दूसरे चरण में स्थापित किया जाता है। यदि रत्न संदेश हैं तो वो अर्धरात्रि की पुकार का संदेश है जिसे मंदिर की शिरोशीला के रूप में और दूसरे स्वर्गदूत के संदेश के सामर्थ्य प्रदान के रूप में परिपूर्णता तक पहुंचाया जाता है।
और कहा, इसी कारण मनुष्य अपने पिता और माता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक देह होंगे, अतः वे अब दो नहीं परंतु एक देह हैं, अतः जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। मत्ती 19:5-6।
हम इस अध्ययन को अगले लेख में जारी रखेंगे।
मेरा ध्यान मसीह के प्रथम आगमन की घोषणा की ओर फिर से दिलाया गया। यूहन्ना को एलिया की आत्मा और सामर्थ में यीशु का मार्ग तैयार करने के लिए भेजा गया था। यूहन्ना की गवाही को अस्वीकार करने वालों को यीशु की शिक्षाओं से कोई लाभ नहीं हुआ। उसके आने की भविष्य सूचना देने वाले संदेश के प्रति उनके विरोध ने उन्हें ऐसी स्थिति में ला दिया जहां वे ये कि वो मसीहा है इस बात के सबसे सशक्त प्रमाणों को भी आसानी से ग्रहण नहीं कर सके। शैतान ने यूहन्ना के संदेश को अस्वीकार करने वालों को और आगे बढ़ाया कि वे मसीह को भी अस्वीकार करें और उसे क्रूस पर चढ़ाएं। ऐसा करके उन्होंने अपने आप को ऐसी दशा में डाल लिया जहां वे पिंतेकुस्त के दिन मिलने वाली उस आशीष को प्राप्त न कर सके जो उन्हें स्वर्गीय पवित्र स्थान में प्रवेश का मार्ग सिखाती। मंदिर का पर्दा फट जाना ये दिखाता था कि यहूदी बलिदान और नियम विधियां अब स्वीकार नहीं किए जाएंगे। महान बलिदान चढ़ाया जा चुका था और स्वीकार भी कर लिया गया था और पवित्र आत्मा जो पिंतेकुस्त के दिन उतरा शिष्यों के मनों को प्रतिष्ठित पवित्र स्थान से स्वर्गीय पवित्र स्थान की ओर ले गया जहां यीशु अपने ही लहू के द्वारा प्रवेश कर चुका था ताकि अपने शिष्यों पर अपने प्रायश्चित के लाभ उंडेल दे। परंतु यहूदी पूर्ण अंधकार में छोड़ दिए गए। उद्धार की योजना के विषय में जो प्रकाश उन्हें मिल सकता था वो सब उन्होंने खो दिया और फिर भी वे अपने निरर्थक बलिदानों और भेंटों पर भरोसा करते रहे। स्वर्गीय पवित्र स्थान ने प्रतिष्ठित की जगह ले ली थी फिर भी उन्हें इस परिवर्तन का ज्ञान न था, अतः वे पवित्र स्थान में मसीह की मध्यस्थता से लाभान्वित नहीं हो सके। बहुत से लोग इस भय के साथ यहूदियों के मार्ग को देखते हैं कि उन्होंने मसीह को अस्वीकार किया और क्रूस पर चढ़ाया, और जब वे उसके लज्जाजनक दुर्व्यवहार का इतिहास पढ़ते हैं तो वे सोचते हैं कि वे उससे प्रेम करते हैं और न तो पतरस की तरह उसे नकारते और न ही यहूदियों की तरह उसे क्रूस पर चढ़ाते। परंतु परमेश्वर जो सबके हृदयों को पढ़ता है ने उस प्रेम की परीक्षा ली जो वे यीशु के प्रति अनुभव करने का दावा करते थे। समस्त स्वर ने पहले स्वर्गदूत के संदेश के स्वीकार किए जाने को अत्यंत गहन रुचि से देखा, परंतु बहुतों ने जो यीशु से प्रेम करने का दावा करते थे और जो क्रूस की कहानी पढ़ते समय आंसू बहाते थे उसके आगमन के शुभ समाचार का उपहास किया। संदेश को आनंद के साथ ग्रहण करने के बजाय उन्होंने उसे भ्रम घोषित किया। उन्होंने उन लोगों से घृणा की जो उसके प्रकटन से प्रेम करते थे और उन्हें कलीसियाओं से बाहर कर दिया। जिन्होंने पहले संदेश को अस्वीकार किया वे दूसरे से लाभान्वित नहीं हो सके और ना ही वे आधी रात की पुकार से लाभान्वित हुए जो उन्हें विश्वास के द्वारा यीशु के साथ स्वर्गीय पवित्र स्थान के अत्यंत पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए तैयार करने वाली थी। और पहले दो संदेशों को अस्वीकार करके उन्होंने अपनी समझ को इतना अंधकारमय कर दिया है कि वे तीसरे स्वर्गदूत के संदेश में कोई प्रकाश नहीं देख सकते जो अत्यंत पवित्र स्थान में जाने का मार्ग दिखाता है। मैंने देखा कि जैसे यहूदियों ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया वैसे ही नामधारी कलीसियाओं ने इन संदेशों को क्रूस पर चढ़ाया है, इसलिए उन्हें अत्यंत पवित्र स्थान में जाने के मार्ग का कोई ज्ञान नहीं है और वे वहां यीशु की मध्यस्थता से लाभान्वित नहीं हो सकते। यहूदियों के समान जो अपने निष्फल बलिदान चढ़ाते थे वे उस कक्ष की ओर अपनी निष्फल प्रार्थनाएं चढ़ाते हैं जिसे यीशु छोड़ चुका है, और शैतान इस धोखे से प्रसन्न होकर धार्मिक रूप धारण करता है और इन कथित मसीहियों के मनों को अपनी ओर ले जाता है, अपनी शक्ति, अपने चिन्हों और झूठे चमत्कारों के साथ काम करते हुए, ताकि उन्हें अपने फंदे में जकड़ दे। प्रारंभिक लेखन 200 पन्वा, देखते 6:1।